व्यक्ति की चिंता करता है, भाई कौन था? हमारे चित्त को हरण कर लेना ये स्वाभाविक सहज बात नहीं है, कौन था? यदि वो नहीं आया दर्शन, अब तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा। भोर में 4 बजे उसको एक स्वप्न सा हुआ, स्वप्न भी नहीं, देख रहा जैसे वही बालक आया। अरे बाबा दूध तो हम उस समय कहा था तो नहीं पिया, पीछे से पिया, मैं बहुत दिनों से यहीं पर भूखा पड़ा हूं, हजारों वर्ष हो गए मुसलमान के भय से हमारे भक्तों ने हमको यही जमीन में छोड़ दिया, तुम उसको निकाल करके हमें खिलाओ पिलाओ, इसलिए मैं प्रतीक्षा कर रहा था। कभी माधवेंद्रपुरी अति करीब से कब आएगा माधव, उन्हीं माधवपुरी के ऊपर जति सन्यासी थे, इसलिए जति पूरा है गोवर्धन में। इसके बाद उन्होंने गांव वालों को लिया, सवेरा हुआ और उसको खोदा, उसे निकाला और तब उन्हीं का नाम पड़ा श्रीनाथ जी गोपाल जी। बहुत दिनों तक वहां पर सेवा हुई। एक दिन उन्हें स्वप्न दिया, हमको खिलाया पिलाया खूब, स्नान भी कराया, हमारा ये जो पाप है वो नहीं गया। तुम जाओ जगन्नाथपुरी, वहां से सुंदर सुंदर मलयगिरी का चंदन मिलता है, अभी भी मिलता है शुद्ध, आदमी पहचान नहीं पाते, वहां से ले आओ और रगड़ करके हमको चारों तरफ में चंदन चढ़ाओ, हमारी शीतलता हो जाएगी। चले चलते चलते पैदल गोवर्धन से पैदल गए, जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, बीच में एक स्थान आया रेमुना जिसको कहते हैं, बालेश्वर के पास में है, वही रेमुना में शाम को एक जगह ठहर गए। वहां पर एक छोटा सा मंदिर था जिसका गोपीनाथ उसका नाम है। गोपीनाथ जी को बड़ी सुंदर सुंदर भोग लगते हैं, खीर का दूध का औट करके एकदम गाढ़ा बना दिया जाता, बहुत अद्भुत अलबेला भारतवर्ष में अपने तरह का ये उसका भोग लगा। 7 कुंडियां कि 12 कुंडी, 12 मट्टी के बर्तन में रख करके उनको भोग दिया, इसके साथ साथ और से चीज होगी, तो वो भोग लग गया। आरती दर्शन करने के लिए भी गए, आरती दर्शन किया, भोग लगा, इसके बाद में ये चले आए और वहां से मंदिर से बाहर में एक गांव छोटा सा है वही पास में, उसी जगह में एक बाजार पर, बाजार में वो जो बाजार कुछ चीज बेचते हैं वो बांस के वो बना देते हैं कुछ ऊंचा मचान जा, उस पर बैठते हैं आदमी या उस पर सामान लगाते हैं, बस उसी जगह बैठ करके अपना भजन करते हैं। 12 बजे रात थी, जब 12 बज गया तो ठाकुर जी का पुजारी पुकार रहा है, माधव कोई है? माधव, माधव नाम का कोई भक्त यहाँ है? उनको माधव माधव पुकार रहे, नहीं भाई माधव जी किस लिए बुला रहे हैं? ठाकुर जी बुला रहे हैं माधव जी को। इन्होंने कहा जिसे हमको बुला रहे हैं, माधव तो मेरा नाम है, तो आपको ठाकुर जी बुला रहे हैं। वो जो भोग लगा उस समय में ये थे और बड़ी उसकी सुगंध आ रही थी, मीठी मीठी सुगंध आ रही थी। इन्होंने सोचा कि हम अपने गोपाल जी के लिए ऐसा ही भोग लगाएंगे, ये कैसा टेस्टफुल है या क्या है। अब वो वहां से तो चले आए और वहां पर बैठे हुए थे, सोचा जी ये तो बहुत गलत काम है, अपने जीवा के लालसा से हमने ये ऐसा कह दिया, किंतु ठाकुर जी ने सुन लिया इस भक्त को कुछ चखाना चाहिए इसको, और ये ऐसा ही जाकर के भोग लगाए और हमको वहां पर मिल जाएगा, वो गोपाल जी ये गोपाल जी एक ही है, हम तो दूसरे रूप में देखते हैं। बस ठाकुर जी ने उनको बुलाया कि देखो, अच्छा तो उस समय में उन लोगों ने सब जितने पात्र थे उसको सबको हटा दिया, लिप पुत करके सब ठीक ठाक कर करके ठाकुर जी को साइन दे दिया। जब साइन दे दिया तो 12 बजे जब रात हुई, ठाकुर जी ने पुजारी से कहा कि देखो वो हमारा भक्त चाह रहा था कि हमारा प्रसाद थोड़ा सा मिले, तो उसके लिए तुम लोग तो ले गया किंतु भूल में एक रख गया, हमने अपने कपड़े में ढक करके रख दिया है नीचे चादर के नीचे, इसलिए जा करके देखो वहां पर एक रखा है, ये ले करके और उसका माधव माधव नाम पुकारना आए तो उसको ये दे। दे करके उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, पुजारी जाकर के आवाज लगाने लगा, आवाज लगाने पर उन्होंने कहा माधवेन्द्रपुर में कौन है, तब मैं हूँ। चलिए चलिए आपको ठाकुर जी बुला रहे हैं, ये वहाँ ले जा करके मंदिर से वो निकाल करके और उनको बर्तन दे दिया दे करके और वो चला गया बंद करके ठाकुर जी को शयन देकर। उन्होंने कहा ये तो बड़ी अद्भुत बात हुई, सवेरे पुजारी सबसे कहेगा और कहने पर सब लोग आएंगे जी तो सिद्ध महात्मा है और आकर के बड़ी प्रशंसा करेंगे और हमसे कहेंगे जिसे पुत्र दो धन दो दौलत दो, ये तुम्हारी ठाकुर जी ये ऐसी बात सुनता है तो जरूर तुम ऐसा कर, बस हमको चारों तरफ से घेर लेंगे, हमारा भजन नष्ट हो जाएगा। भक्ति राज्य में प्रतिष्ठा सबसे बड़ी भारी गड़बड़, धन उतना नहीं और सब चीजें इतनी हानिकारक नहीं जितना प्रतिष्ठा है, सबको छोड़कर सकते हैं, स्त्री को छोड़ करके हम लोग चले आए, धन संपत्ति को हम लोग छोड़ करके आए, प्रतिष्ठा नहीं जा रही, मानो दामन और चोला का संबंध है, अभी नहीं छूटती, ये बिना भगवत कृपा से नहीं जा सकती, ये बड़ी बात। तो वही कह रहे हैं सब जाएगी, सब लोग प्रशंसा करने लगेंगे, प्रतिष्ठा करने लगेंगे, उसमें जो यदि खो गया बाबा मैं तो कुछ हो गया तो वो छाती तान करके चलता, अब मैं सिद्ध भक्त हो गया, इतनी प्रशंसा मिल रही है, इतनी महान, आप तो गुरुदेव हैं, साक्षात भगवान हैं, उसका पैर पृथ्वी पर नहीं पड़ता, और इसका नतीजा ये होता है कि डूब करके वो नरक में मिल जाता है, भजन तो नष्ट भी हुआ और कहां रसातल में पहुंच जाता है। इसलिए जब थोड़ा सा भजन करने लगे और कोई प्रतिष्ठा आए, रुपया पैसा मिले, लोग इज्जत करने लगे, समझो ये हमारा प्रधान शत्रु ये चीज है और नहीं तो उसी में डूब मरेगा, इसलिए इसको कहते हैं क्या, रंग तरंग रंगीनी, इसकी तरंगे आती हैं और साधक भक्त को डुबा देती हैं उस तरंग में, इससे बचने की चेष्टा करनी चाहिए। आप लोग भी कुछ दिन अग्रसर होंगे कुछ तो कहे वाह रामचंद्र जी तो वास्तव में एक भक्त आ गए, संसार की परवाह नहीं है, ये तो वो कौन महात्मा, तुकाराम घर बार की सूद नहीं, नौकरी में भी नहीं जाता, नौकरी चली जाए कोई बात नहीं, बस खंजड़ी बजाते रहते हैं, लोग इसकी प्रतिष्ठा देंगे और वो रसातल में चला जाएगा, और जो भक्त इसके आने पर भी उससे बच करके चलने की चेष्टा करेगा, अपना भजन ठीक करता चलेगा, वो थोड़ा सा अग्र, ये भी भजन में बाधक, इसको कहते हैं तरंग, इससे भी बच करके जब चलता है तब आगे वो बढ़ता है। इन छह स्थितियों को हमने पार कर लिया, सच्चे साधकों के लिए कह रहे हैं जो भजन में ठीक ठीक अग्रसर होना चाहते हैं, उद्देश्य एक ठीक कर लिया, लाइट स्तंभ जीवन का उद्देश्य, एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द लाइफ, हमको भजन करना है और संसार की बातें जो क्रियाएं हैं उसको भी भक्ति के अनुकूल करके चल रहे हैं, परिवार भर को जो गृहस्थ है वो भी परिवार को साथ लेते हुए चल रहे हैं, अनुकूल लेकर के प्रतिकूलों का क्या, उसमें असत्संग है, असत्संग माने क्या, जो भजन नहीं करते, असत व्यक्ति हैं उसका दुरुपयोग करते हैं, उनका भी संग छोड़ो नहीं तो भजन नहीं होगा, इसलिए जो जो भजन के प्रतिकूल है उसको छोड़ते हुए आगे बढ़े, चाहे गृहस्थ हो चाहे, तो ये सब चीजों को जो बतलाया इनको तो साधक भक्त को जिसका लक्ष्य है ये कृष्ण प्रेम, हम ब्रज प्रेम पाएंगे, इसके अतिरिक्त कृष्ण देने पर भी हम नहीं गए, यदि मुक्ति भी दे दिया धन भी दे दिया हमको जरूर, तो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से प्रारब्ध से वो आ रहा है, उसको भोजन मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, क्या जरूरत है आगे, उसको तो लेकर के जाना नहीं है, ऐसा विचार करके ये लोग सीधे एक उद्देश्य कर लेते हैं, हमको ये चीज की जरूरत है, ये साधन अवस्था में ही होगी। बहुत सौभाग्यवान व्यक्ति अपने उद्देश्य को स्थिर करता है, मैं जीव का स्वरूप क्या है, कृष्ण भक्त, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, ठीक कृष्ण का भक्त है, हम जीवों का स्वरूप में सब में आत्मा में ये है, अब फिर उसमें विचार करेंगे किस तरह का भक्त, किस तरह का भक्त? प्रहलाद ध्रुव महाराज की तरह, प्रहलाद महाराज की तरह, या हनुमान की तरह में तुम भक्त है? एक एक जीव का एक एक स्पेशल भक्ति है, जिसमें से पांच प्रकार की बतलाई गई, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। मधुर गोपियों का है, सख्य सखाओं का है, वात्सल्य यशोदा जी का, नंद बाबा का, और दास्य हनुमान का, और ये चारों सनंदन, सनातन, सनत कुमार इत्यादि ये जो ऋषि लोग हैं, इनका शांत प्रेम है। उस समुद्र में लहर नहीं है, वो ब्रह्म है निराकार, मैं उनका दास, बस इतना है। हनुमान जी सेवा कर रहे हैं इस रूप में, वो प्रभु है, मैं दास हूं। उनके आसन पर बराबर नहीं बैठेंगे, सखा लोग कूद करके उनके आसन पर क्या उनके कंधे पर बैठ जाएं, उनके सिर पर पैर भी रख देंगे, गले में हिल मिल करके खाएंगे, जूठा और ये सब का विचार नहीं। और मैया, मैया उससे भी बढ़ करके ममता और स्नेह है, और उससे गोपियों का है। जब गुरु से दक्षिणा दीक्षा मिलती है, दीक्षा लेता है, उसी समय में सुनते सुनते भगवान की कथाओं को इनमें से कोई एक भाव को वो ठीक कर लेता है। ग्रेजुएट होने पर उसको एक लाइन पकड़ना पड़ता है एमए में, किसी खास एक विषय को जिसमें उसकी रुचि है उसको लेना पड़ता है, ऊपर से थोपा नहीं जाएगा। वो उसको जिसमें रुचि है, जिसमें वो अच्छा समझता है, सहज रूप में स्वाभाविक उसकी गति है, उस विषय को वो लेता है। एक विषय, दस विषय नहीं चलेगा। पीएचडी में भी, डीलिट में भी एक विषय पर अनुसंधान रहेगा। ऐसे हम इनमें से कोई एक के प्रति लोभ हो जाएगा, उनमें उसको स्थिर कर लिया जाए कि हमको तो इसी तरफ में अग्रसर, हम तो गोपियों जैसी भक्ति चाहते हैं, हम यशोदा मैया जैसी भक्ति चाहते हैं, और ऐसी भक्ति का उद्देश्य लेकर के स्थिर करके हमको अग्रसर होना पड़ेगा। उसके लिए जो साधन है अनुकूल उसको ग्रहण करेंगे, प्रतिकूल को सब दूर। एक मान लिया राधा कृष्ण का ब्रज में गोपियों के भावों को प्राप्त करना चाहते, किंतु द्वारका के प्रति भी रुचि है और रुक्मिणी के प्रति भी आदर है, और वो भी उनको भी प्रसन्न करना चाहता है, नारायण भगवान वैकुंठ में उनको भी प्रसन्न करना चाहता है, तो वो बीच में लड़ झड़ा जाएगा, कृष्ण की भक्ति ब्रज में नहीं मिलेगी, बीच ही में अटक जाएगा। इसलिए शुद्ध रूप में श्रवण करके हमको अग्रसर होना है। संसारिक बातों को तो छोड़ी दीजिए, ब्रह्मांड में जितनी लालसा और कामना बात, इसको तो छोड़ दीजिए, परमार्थ में भी एक सीधा रास्ता में, उसमें भी कोई चाहेगा यशोदा मैया जैसे वात्सल्य हो, सखाओं जैसा कृष्ण से खेले भी, गोपियों जैसी हो, ये नहीं होगा। एक उसमें से जीव का स्वरूप एक ही, भजन करते 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 जब ये सब चीजें दूर हो जाती हैं, माया का पर्दा हट जाता है, अपने आप वो भाव हृदय में जागृत हो जाता है। और जब तक नहीं होता तब तक समझो कि हम अभी गड़बड़ में, हमारा भजन अभी शुद्ध नहीं चल रहा है। जब हमारे ये छह चीजों को जो बतलाया, खटर पटर मत करो, जब हमारा ध्यान चला जाता है, तो और भी चार प्रकार के अनर्थ हैं। अनर्थ माने क्या? अर्थ माने होता है इष्ट, इस माने जो मैं चाहता हूं, अनर्थ जो मैं नहीं चाहता हूं, वो जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है, जिसको हम नहीं चाहते हैं वो है अनर्थ। अर्थ माने धन संपत्ति, जिस चीज को, अर्थ माने रुपया पैसा ही नहीं, कोई भी चीज को हम चाहते हैं वही हमारे लिए अर्थ है। तो अर्थ हमारा क्या है? भक्ति, कृष्ण के प्रति प्रेम, कृष्ण के प्रेम के बदले जो चीज, दूसरी चीज है जो उसके विपरीत है, उसको कहते हैं अनर्थ। उसके लिए जो बाधक है, क्या बाधक है? वो तो छह चीजें बाधक थी, उसको बतलाया, रंगनी तक, तरंग रंगनी तक। अब थोड़ा सा आगे चले जो सूक्ष्म रूप में जो बाधाएं हैं, वो क्या बाधा कहते हैं कि वो चार प्रकार की बाधाएं हैं। पहला है दुष्कृति उत्थ, जो हमने पूर्व जन्म में इस जन्म में दुष्कृतियां, दुष्कृति जो खराब जो कार्य किए हैं, जिसको साधारण रूप में पाप कहते हैं, अनाचार कहते हैं, ये सब जो हमने की और उसका फल अभी आ रहा है, वो भजन में बाधा देता है। जैसे हमने पूर्व जन्म में किसी से हिंसा द्वेष की, उसे मारा, उन्हें जान से मार डाला, या जान से नहीं मार डाला, उसको अपमान किया बहुत बार, वो तो अपमान आएगा ना, जरूर आएगा, रिएक्शन आएगा। एक सूरत नाम के राजा थे, उन्होंने स्वर्ग पाने के लिए लाखों बकरे और भेड़ों की बलि दी, एक दो नहीं लाखों को। जब मृत्यु का समय आया तो स्वर्ग में जाने लगे, क्योंकि ये यज्ञ किया है ना, तो जितने जानवरों को मारा था वो एक लाइन में खड़े हो करके और फरसे लेकर के खड़े हो गए। पहले जो आपने मारा है इसका फल भोगते जाइए, तब जाइए वहां। अब खड़े हो बस मारे और गिर करके छटपट कर लाखों की कतार देख करके एकदम कांपने लग गए। मरे तो नहीं, क्योंकि वो भोग का शरीर, ये तो मर ही गया, फिर भोग का शरीर लिया। जैसे स्वप्न के आदमी को काटते हैं ना और उसमें दुख होता है, उठने पर होता है, तो कुछ हुआ नहीं किंतु दुख होता, शरीर कांपता है, उसमें भी दुख होता है जो शरीर में होता है, स्वप्न में भी किसी को कोई कष्ट होने पर। तो वैसे ही वो देख रहा है लाखों लोग खड़े हैं, बकरे वो सब और भेड़ और उनको मारने के लिए तैयार है, एकदम कांपने लग गए, गिर गए। नारद जी ने उनको दिखाया अपने जोग बल से, ये देखो हिंसा का फल क्या है, स्वर्ग तनाजन कितने दिन पर अभी जाएगा, इसे कभी भी हिंसा इत्यादि नहीं करनी चाहिए। तो उसने जो हिंसा की, अब वो भजन करने के समय में वो आती है, अचारे हाय है मैंने तो कुछ किया नहीं, ये दुख क्यों आ रहा, दुख आ रहा है यूं ही नहीं आ रहा है, तुमने निमंत्रण दिया है दुख का, पहले जो किया ना वो सब आ रहे हैं। इसलिए दुष्कृति, जो जो आपने खराब काम किया है, छोटा बड़ा अच्छा बुरा जो किया है, वो सब उसके फल आएंगे, ये दुष्कृति के द्वारा आए हुए ये फल हैं। इसलिए भजन में कभी कभी ये बाधा देते हैं। उस बाधा से यदि कोई घबरा गया, कहा जिस ठाकुर जी को उठा करके और जमुना में फेंकाया, पानी में फेंका, दर्द बेकार, हमारा बेटा मर गया, हमने इनको पुकारा हजार बार, कहा जी ठाकुर जी है सालग्राम जी, हमारे बेटे की रक्षा कर दिया, बेटा हमारा रक्षा नहीं हुआ, बस उठाओ बेकार से, ये पत्थर सीधा है, हम झूठ मूठ में इतने दिन में, हो गया भजन विचलित हो जाता है। इसलिए ये सब बाधाएं हैं, ये दुष्कृति उत्थ है। ऐसे मैंने एक संक्षेप में बताया, लाखों ऐसे क्रियाएं हो सकती हैं जो अभी हम करते हैं, इसलिए आगे के लिए नहीं करना चाहिए। अंडा खाना, गोश्त खाना, बड़े बड़े मांस के क्या कटलेट और क्या क्या बनते हैं, बड़े आराम से खाते हैं। आप मिस्र के हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे, आपको बड़ी सुंदर सुंदर चीजें मिलेंगी, क्या मुर्गी का भी बच्चा अभी एकदम छोटा कोमल, उसको चाकू से काट करके, नींबू दे करके, लमन नमक दे करके, चना जैसे खाता है ना कच्चा, नहीं समझते हैं कि इनमें कोई दोष है, अंडे में कोई दोष नहीं, इसमें सफेद आलू समझते हैं, किंतु उसका नतीजा इतना भोगना पड़ता है, जाते में पीस देगा वो काम, नहीं समझते हैं, कहते ये सब बेकार की बातें हैं, खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, जो होगा सो देखो, कोई चिंता नहीं, इसको पाप ही नहीं समझते हैं, भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, पेट ही में उसको बच्चे को मार दिया जाता है। अरे अपने भोग को संभालो ना, संजप रहो, ये तो नहीं उसको हत्या करता है, ये तुम्हारे बस की तो बात है नहीं, बच्चा बना देना, तो ये सब अपराध होते हैं। अभी थोड़ी सी भजन में ना देखती, इस कारण से रुचि हो गई, किंतु ये सब बात पाप आता है ना, ये बात है, उस समय भी धैर्य धारण करके चलना चाहिए। भगवान का भजन किसी भी स्थिति में न छोड़े, सब से इससे बच जाएंगे। ये दुष्कृति उत्थ और सुकृति उत्थ, हमने जो अच्छे कर्म किए हैं उसका फल भी आएगा। यदि दुख बिना बुलाया आता है तो सुख भी आएगा भाई, इसलिए संत पुरुष लोग, हम लोग उसके लिए चिंता नहीं करते। हम तो अभी संत नहीं है, किंतु हम लोग भी उसके लिए चिंता नहीं करते कि कल कहाँ से भोजन मिलेगा, इसके लिए चिंता नहीं, कपड़े कहाँ से आएंगे और सब क्या होगा। हमारा कर्म जो ये शरीर दिया है तो बचपन से लेकर के अंत तक ये जरूर, जैसे दुख आ रहा है बिना बुलाए वो भी आए, निश्चिंत होकर के वो भजन करते हैं, भगवान पर सब कुछ समर्पण कर देते हैं। जो होगा, जो होना है वो तो होगा ही। इसलिए दुष्कृति उत्थ हुआ और सुकृति उत्थ, जो तुमने पुण्य के फल के कार्य किए हैं। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ पुण्य का काम करता है, अन्यासी होता है। हमारी हिंदू संस्कृति ऐसी है, किसी को दान, गरीब आते हैं हमको दे दिया, कभी कभी उसे भगा भी देते हैं, गाली गलौज भी करते हैं, कभी मारपीट भी देते हैं। जब पुरुष लोग नहीं रहते तो यदि कोई भिखारी अतिथि आ जाता है तो महिलाएं बड़े प्रेम से उनको, और यदि उसने कह दिया जैसे मैं थोड़ा सा हाथ देखना जानता हूँ, तब तो कोई बात ही नहीं। हम लोगों से बहुत बार लोग, बहुत सब लोग पूछते हैं, महात्मा जी आप हाथ देखना जानते हैं, प्रणामी लेकर के पहले और तब वो पूछेंगे, बल्कि वो पूछते हैं। हम कहते भैया हम तो कुछ नहीं, ये सब नहीं, हाँ उसको उलट देना हम जानते हैं, दीदी को हम लोग उलट देंगे हरिनाम के द्वारा, तुम हरिनाम करो, तुम्हारा यदि बुरा दिन है वो सब ठीक हो जाएगा, ये तो हम जानते हैं, किंतु तुम्हारा क्या होगा, क्या है, तुमने क्या किया, ये सब हम जानने पर भी नहीं बतलाएंगे। हम लोग समझ जाते हैं कि हाँ क्या किया है। एक आदमी को बीज चढ़ा है तो समझेगा नहीं ये सांप या बिच्छू ने काट दिया है या कुछ ऐसी बात है। यदि नाक से बलगम आ रहा है तो हम समझ जाएंगे ना इसको कोल्ड लगा है। तो वैसे संत पुरुष लोग जान जाते हैं जैसे पूर्व जन्म के क्या कर्म है, कैसे क्या है और इसका कैसे होगा, कभी इसकी झंझट में नहीं रहते। इसलिए सुकृति के द्वारा जो पुण्य है और पुण्य के द्वारा जो कर्म है उसका फल भी तो आएगा। क्या आप कोई भी बिजनेस नहीं कर रहे और काफी रुपये पैसे आ रहे हैं, कुछ भी नहीं करते तभी आ रहा है, और टाटा बिरला के घर में जन्म हो गया वहां पर कुछ भी नहीं करते हैं तब भी देखिए कितना संपत्ति। अभी हिंदू जा ब्रदर्स लोग हैं, मैं बम्बे में था तो सुना, वो हमको ले भी गए थे अपने घर में, तो उनका एक लड़का था एक ही बड़े भाई का, और एक ऑस्ट्रेलियन लड़की पर फिदा हो गया, उसे प्रेम कर लिया और उसने इनकार कर दिया कि हम इंडियन से शादी नहीं करेंगे, ये कुछ श्यामला और वो थी गोरी, बस उसको गोरा और सफेद का वो, बस उसने सिंचाई कर लिया, बीज खा लिया, मर गया। बड़ा तबाही उनके वंश में, परिवार में बड़े दुखी। उसी तरह से सुख भी आना होगा ना, सुख जब भी हमने काम किया है तो जरूर आएगा, किंतु उसी सुख के और दुख के झमेले में पड़कर सुख आया और भूल गए। हिंदू जाके घर में जन्म हुआ और खूब सुखा रहा, भजन होने देगा। हमारे संत लोग बेवकूफ नहीं थे, जो बड़े बड़े राज्यों को छोड़ करके भगवान का भजन करने के लिए आए। ये सब अतिरिक्त अर्थ, अतिरिक्त प्रतिष्ठा इत्यादि सभी की यदि ये उसमें प्रभाव नहीं है कि उसको भगवान के भजन की सेवा में लगा दें तो उसको डुबा देगा। इसलिए सुकृति माने पुण्य जन्म, पूर्व जन्म के पुण्यों से जो वैभव प्राप्त हुआ है वो भी भजन में बाधा देगा जो आएगा तो अभी। इसलिए जितनी जरूरत है उतनी चीज हमारे संत लोग या हमारे पूर्व जन्म पूर्व के हमारे वंशज लोग, ऋषि महर्षि लोग या घर वाले गृहस्थ भी उतना ही संग्रह करते थे जितना जरूरत। मधुमक्खी का छाता सारा वर्ष मधु फूलों से लिया, हम लोग तो मधु नहीं फूलों से लेते, बड़ी मुश्किल से लिया और छाता लाया, ये ग्यारहों के दिन में बैठ करके आराम से मधु का पान कर। और एक नटखट बंदर आया और बंदर का भाई वो बानर नर ही आया, بہ لیا یا بانر ہی آیا اور اس کو توڑ کر کے کپڑے میں نچوڑ کر کے ایسا دبایا اور لاکھوں مدھمکھیاں اسی کے اندر میں مدھو ہو کر کے رس ان کا نکل گیا. اس طرح سے ہم لوگوں کی اس دھن سمپتی کو بھی ایسا نہ بنائیں مدھو کو جیسا بان ہے تو یہ ہمارا پراڑ بھی لے لے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ سکرتی اتر سکرتی سے آنے والے جو سکھ ہیں آئیں گے کنتو ان کو کیسے رکھو مہاراج جنک کی بھانتی امبریش مہاراج کی بھانتی پانڈووں کی بھانتی اس میں ہم کو مرنا نہ پڑے اس کا سدوپیوگ کریں. کس روپ میں پریوار کا بھرن پوشن تو کریں گے ٹھاکر جی کی سیوا ہو سنتوں کی سیوا ہو ہمارا پرمارتھ ہو اس کے لنک میں کیا جائے. کوئی چیز بھی منع نہیں ہے کوئی بھی وستو بھگوان کا ویرودھی نہیں ہے دھن بھی نہیں کچھ بھی نہیں اس کا ویوہار ہی دوست اس کا سد ویوہار اس کو اوپر اٹھا دے گا اور اس کا درویوہار کریں گے پیچھے چلیں گے. ایک چاقو ہے اسے سیب کاٹ لو اس کے چھلکے اتار کر کے کھاؤ سبزی بنا لو اور اس کے سدوپیوگ ہیں. اور جدی اپنے چھری کو لیا اور اپنے یا اپنے متر کے گلے میں گھونپ دیا تو یہ دباؤ تم کو مرنا پڑے گا. اس لیے اسے سب چیز کا سد ویوہار ہونا چاہیے. سادھارن لوگ ارتھ تو کمانا جانتے ہیں کنتو اس کا سد ویوہار نہیں کرنا جانتے. ہمارے گرو جی کہتے تھے ارتھ کمانا سہج ہے کنتو اس کا سدوپیوگ ایسا کرنا جو بندھن میں نہ لائے مرتے سمے اسی کی چنتا کرتے کرتے مر جائیں یا کہیں خرچ ہو گیا کہیں نشٹ ہو گیا تو اسی کی چنتا میں مر گئے. اس کی کیا ویوستھا ہوئی. ایک آدمی نے کروڑوں روپئے کمائے اور مرتے سمے کیا کروں سنتان تو ہے نہیں میں اس کی کیا ویوستھا کروں. سنتان بھی ہے تو ایک دم بدماش. متھرا میں ایک ایسا ہی پریوار ہے ایک ہی ایک لوتا لڑکا مہا بدماش بزنس آ رہا ہے وہ بوڑھے ہو گئے دیکھتے ہیں کنتو وہ نہیں جائے گا گھر میں پڑا رہے گا بدماشی کرے گا پیسہ مانگے گا نہیں دیں گے تو اور اتپات کرے گا. اب کہتے ہیں کہ یہ لڑکا کیوں ہوا یہ بلکہ نہیں ہوتا یا جنم کر کے ہی مر جاتا تو اچھا کبھی بندوق بھی سام ایسا مار دیں گے جب پیسہ نہیں دیں گے. کار خرید دیا اچھا سے لو کار اس کی کامنائیں نہیں کروں تو یہ سکرتی اتھا ہوا. اس لیے جدی ہے بھی تو اس کو سب ویوہار میں لایا جائے جو ہمارا پرمارتھک بھی کلیان ہو آرتھک بھی کلیان ہو. یہ دو ہوا. تیسرا ہوا اپرادھ اتھا وہ سب تو پاپ جیسے ہیں اسے رہائی ہو سکتی ہے کنتو اپرادھ والا یہ بھی بڑا بھینکر ہے بہت بھینکر یہ چوپٹ کر دے گا. اس لیے اپرادھ نہ ہو. اپرادھ کچھ پرکار کے ہیں. ایک ہوتا ہے سیوا اپرادھ. آپ لوگ بھکتی راجیہ میں چل رہے ہیں اس لیے بتلا رہا ہوں سیوا اپرادھ. ٹھاکر جی کی سیوا کری کری بال گوپال یا رادھا کرشن یا جیسے بھی سب کے گھر میں کچھ ضرور ہوتا ہوگا. بہت سے جگہ ادھکانش مندر ہیں وشیش کر کے تیاگی لوگوں کے لیے جو تیاگ کر کے اور سنیاس کا بانا یا برہمچاری کا بانا پہن کر کے تیاگی کا رہ کر کے گھر بار ماتا پتا کو چھوڑ کر کے آئے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اپرادھ بہت بھینکر ہے. اپرادھ نہیں ہونے پائے. اپرادھ کیا ہے سیوا اپرادھ. ٹھاکر جی کو گھر میں رکھا یہاں ہیں یہ ٹھاکر جی ہیں یہ مورتی ہے یا ٹھاکر جی ہے یا اسٹیچو ہے کیا چیز ہے یہ اسٹیچو تو نہیں. اسٹیچو میں اور مورتی میں سی وگرہ میں کیا انتر ہوتا ہے یہ سمجھنا چاہیے بھکت کو جو بھجن کرتا ہے سادھارن نہیں سمجھیں گے. منورنجن کے لیے جو چیزیں رکھ دی جاتی ہے وہ ہے اسٹیچو کے سمان پتا جی کے اسٹیچو ماتا جی کے اسٹیچو سبھاش چندر بوس کی جواہر لال نہرو کی اور ابھی آ رہا تھا دیکھا راجندر بابو کا وہ اسٹیچو کہیں راستے میں لگا ہوا تھا کہیں گاندھی جی کا اپنا لوٹا کیا سوٹا ہاں وہ لے کر کے اور چل رہے ہیں ایسے دھوتی پہنے ہوئے یہ سب اسٹیچو ہے. کسی کا یہیں تک اسٹیچو ہوتا ہے हम लोगों के वैष्णव धर्म में यहाँ पक्का नहीं होता है, पूरा होना बैठा हो या खड़ा हो। तो ये शिव विग्रह पार करके चलते हैं। शिव विग्रह माने भगवान, प्रतिमा न हो तुम ही साक्षात प्रजन। सालग्राम शिला जो है टुकड़ा वो काला सा है, वो पत्थर नहीं है, जहाँ ताल से ठोकर मार दिया गए तो जहन्नम में, देखने में पत्थर ही जैसा किंतु सालग्राम है, उसके चिन्ह सब बतलाए गए हैं। ठाकुर जी को सालग्राम शिला को, राधा कृष्ण को यहाँ पर रख दिया, गुरु जी को भी रख दिया, और जूता चलते हुए लगाते हुए बड़े आराम से सिगरेट फूंकते हुए चले जाए, भजन भी करते हैं। ये क्या हुआ, सेवा अपराध हुआ कि नहीं हुआ? एक पूज्य व्यक्ति आ जाए, कोई बड़ा अफसर आ जाए या पिताजी आ जाए, उनके सामने सिगरेट पियेंगे और इनके सामने ये मूर्ति के सामने करेंगे तो इसको ये समझिए कि आप स्टेच्यू समझ रहे हैं, तो इसलिए नहीं रखना ही अच्छा है। और यदि रखते हैं तो ठीक से रखिए, उसका पूजन कीजिए, सेवा अपराध नहीं है। ठाकुर जी को यहाँ रखा और किसी ने कुछ गड़बड़ी किया, उसे एक थप्पड़ मारा। किसी को डांटना, किसी को अधिक प्रेम करना ठाकुर जी के सामने नहीं, क्यों? डांटने वाले फटकारने वाले प्रभु हैं, तो प्रभु शासन नहीं करते तुम शासन करेगा, तो इसका मतलब है जो वो पत्थर का है वो शासन नहीं कर सकता, वो कुछ उसमें प्रभाव नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। ये सब क्या हुआ, सेवा अपराध। और भी ऐसे 32 प्रकार के सेवा अपराध हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। जो साधक उन्नति करना चाहता है, भजन में प्रवेश करना चाहता है, खूब अच्छी तरह से याद रखनी चाहिए। ठाकुर जी के सामने पैर पसार देना, कड़ी कड़ी बात बोलना, शोक करना, कोई कोई हो गई बात शोक कर रहा है, हाय हाय मैं तो मारी गई, मैं तो मारी गई, वो ठीक से विचार करके जो कुछ हो रहा कर रहे हम उसके लिए शोक करते हैं, इसलिए ये सब सेवा अपराध होगा। किसी को दंड देना या किसी को अधिक कुछ, गुरु जी बैठे हैं, कोई वैष्णव बैठा है, गुरु जी बैठे हैं और कोई व्यक्ति आया उसको कोई इसी से डांट रहा है, तुम मूर्ख है, तुमको ज्ञान नहीं, और गुरु जी वहां पर बैठे हैं, ये क्या हुआ, समझ रहे हैं ना? पिताजी बैठे हैं उनके सामने दूसरों को शासन करके डांट रहे हैं या मालिक बन करके कुछ दे रहे हैं, अरे तुम्हारा मालिक तो ये बैठा है और उसके सामने उसको आदर नहीं करते, अवज्ञा करते हैं, तो ये विश्व ब्रह्मांड के जो प्रभु हैं इनको स्टैच्यू समझ करके तुम ऐसा कर रहा है, इसलिए तुम सेवा करने का अधिकारी नहीं है। आज हो रहा है हरिजन सब भी मंदिर में भी क्या करेंगे, यही तो करेंगे और मरेंगे। पहले उस अधिकार पर आए, उनको समझे कि ठाकुर जी क्या है, विग्रह क्या है। अभी अभी आपको सुनाया माधवेंद्रपुरी जी ने, को सुनाया ना कथा, उन्होंने कहा जी हमको यहाँ से निकालो, हमारी ये सेवा करो, देखो तो हमारे कान में छेद है, हमको ये कुंडल नहीं बना सकता, हमारी ठाकुर जी मानेंगे। अभी जयपुर में वो ठाकुर जी हैं और कुंडल भी वो है, पैदल साक्षी देने के लिए 1000 मील दौड़ करके गए, पीछे 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 साक्षी देने के लिए। पता नहीं ये सब भाव भावुकताएं हैं, ये सब भक्ति का नहीं, गलत बात है, भक्त ऐसा नहीं मानता। इसलिए जिसको भक्ति करनी है, प्रेम करना है, तो ये ऐसा साधन करके चले, नहीं तो बीच में अटक जाएगा। अच्छा, एक तो हुआ सेवा अपराध, इसे बचे। एक होता है नाम अपराध, नाम करते हैं, नाम के प्रति अपराध मत करो। ये नाम अपराध क्या है, दस है, अब इसको बतलाएंगे तो सारा चला जाएगा, इसलिए ये समझो, वैष्णव की निंदा मत करो, संतों की निंदा मत करो, गुरु जी की अवज्ञा मत करो, भगवान का नाम और सब साधन जितना है, काली दुर्गा का पूजा या और सदाचार, ये सब नाम के बराबर है, ऐसा मत समझो। नाम लेते हुए आलस्य मत करो, नाम में इतनी महिमा बतलाएगी, एक नाम करने से उसका संसार पूरा दूर हो जाता है और उसको सर्व सिद्धि हो जाती है। ये सब बेकार की बातें हैं, वो हुआ है कुछ रुचि बढ़ाने के लिए ऐसा कर दिया, जैसे कहते हैं ना ये घोड़ा कहीं आसमान में उड़ रहा है, अरे घोड़ा कहीं आसमान में उड़ता है, अरे ये तो हनुमान जी जैसा वीर है, हनुमान जी जैसा वीर हो जाएगा, ये समुद्र को लांग, ये सब कुछ में शेर है, शेर बब्बर, तो ये सब तुलना मूलक के लिए ये शब्द आ गया। तो वैसे ही नाम की महिमा जो शास्त्रों में और भक्ति की महिमा दी गई है ये सब उतनी नहीं है। अरे उसमें ये है, सवेरा हो गया भोर हो गया कितना मिनट, ये प्रसंग थोड़ा सा बता रहे तो, और शिकर तो नहीं हो रहा है जिसको भक्ति की जरूरत है इन सब पर विचार करें, नहीं तो भजन में उन्नति नहीं होगी। चलो ऐसे ही बस, कभी किया कभी नहीं किया, अस माने उससे उस धारा से धारा प्रवाह रूप में नहीं है। इसलिए मैं ये सब बतला रहा हूँ कि हम लोग ठीक ठीक अपने गोल तक पहुँच सकें, भगवान के प्रेम को पाएं। जहाँ जहाँ कोई बाधा है उसके लिए ये सब शास्त्रकारों ने भजन करके देखा कि यहाँ पर ये नुक्स है, उसको दूर करने की आप लोग भी इसको चेष्टा करेंगे। ऐसे नमापराध शरीर में अंगता और ममता, मैं और मेरापन का भाव मत रखो, इसके अंदर में है आत्मा, ये शरीर जाएगा अवश्य जाएगा, कोई नहीं रोक सकता, विश्व की कोई भी शक्ति नहीं रोकेगा। हाँ भजन के प्रभाव से ये शरीर को छोड़ करके जो शरीर जो समय मिलेगा वो नहीं नष्ट होगा, जैसे हनुमान जी का शरीर, नारद जी का शरीर, ध्रुव जी का और ऐसे, वो अतल बदल नहीं होगा, वो ऐसे इसी से बैकुंठ और यहीं जहाँ जहाँ भी जाना होगा वायु की गति से चारों तरफ, उससे भी अधिक है, यहाँ तक बैकुंठ की गति इसी शरीर से हो जाती है, उसमें ध्वंस परिवर्तन कुछ नहीं होता। इसलिए नमापराध से दूर रहो। शास्त्रों में जितनी भी नाम की महिमाएं लिखी गई हैं वो एकदम पूर्ण सत्य, बल्कि आंशिक रूप में लिखी गई, पूरा नहीं लिखा गया नाम का प्रभाव क्या है, इसलिए उस पर विश्वास पूर्ण रखो। जो शास्त्र में जो नाम की महिमा दी गई वो सब सत्य है, गुरु जी की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, भूल करके भी उनको मनुष्य मत समझो। कृष्ण भी तो तटी जाते होंगे दिखलाने के लिए और रोते होंगे, उनको भूख लगती थी, चोरी भी करते थे और लोगों से लड़ते भी थे, पक्षपात भी करते थे, उनको साधारण मनुष्य मत समझो, वो ऐसा अभिनय कर रहे हैं, अभिनय करना यथार्थता एक नहीं है, इसलिए गुरु को ऐसा मत समझो। यद्यपि सब गुरु एक बराबर नहीं होते हैं, कुछ लोग निम्न अधिकारी के भी गुरु होते हैं जो कि नाम का उपदेश दे देते हैं, सिद्धि अभी नहीं है, उनको भी मान लिया गया, जहाँ ये भगवान के तरफ में ले चल रहे हैं इसको भी भगवत स्वरूप ही मान लो। किंतु गुरु कौन है? नारद जी जैसे लोग गुरु, जिसके हाथ ऐसा रख दिया और जो कुछ है जाओ तुम्हारी सब सिद्धि हो, समस्त वेद की विद्याएं सबको आ जाए, तुमको कृष्ण प्रेम अभी हो जाए, वो कुछ उत्तम अधिकारी वैष्णव जो गुरु है वो अलग है। किंतु इस गुरु को भी जो थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं इनको भी सम्मान देना उचित है, कर्मी लोग भी अपने गुरु को सम्मान दें। तो यथार्थ जो नाम की दीक्षा और मंत्र देने वाले हैं इनके प्रति क्यों नहीं याद रहे? जो थोड़ा सी भरे हैं उनका भी हम कृतज्ञ हैं, किस भी तरह से हमारा मोड़ को उन्होंने भगवान की तरफ में मोड़ा है, और जो शिक्षाएं दे रहे हैं जो वहां तक ले जा रहे हैं ये सबको सम्मान यथा उचित देना चाहिए। ये एक हुआ, और एक होता है वैष्णव अपराध, नहीं विशेष रूप से है वैष्णव अपराध है तो उसमें तो भी, और एक है भगवत अपराध, भगवान के प्रति अपराध, वैष्णव के प्रति अपराध, एक होता है नाम के प्रति, एक सेवा, ये चार प्रधान है। कभी समय मिलने पर इसको विशेष रूप से बतलाऊंगा। अब इसमें जो सेवा अपराध है, ये हरिनाम करने से, प्रार्थना करने से, ठाकुर जी की सेवा करने से ये तो सहज में दूर हो जाएगा, ये अत्यंत अपराध नहीं है, ये थोड़े से प्रयास से जिसे हम बच भी सकते हैं, और हरिनाम के द्वारा, स्तव स्तुति के द्वारा ये सब चीजें दूर हो जाएगी। वैष्णवों का अपराध बड़ा भयंकर है, वैष्णव कौन है? जिन्होंने नाम का आश्रय ले लिया है, नाम को ही स्वयं भगवान समझते हैं, कुछ तत्व ज्ञान भी उनको हो गया है, ये जड़ है ये चेतन है, और कुछ संबंध ज्ञान भी हो चुका है। संबंध ज्ञान माने क्या? मैं दास हूँ वो प्रभु हैं, कौन किस्म के हम दास हैं, कौन तरह के प्रभु हैं, ये भी थोड़ा सा ज्ञान हो गया, भक्ति राज्य में कुछ प्रवेश कर, और तीसरे जो हैं वो मध्यम अधिकारी में आ गए हैं। ये मध्यम अधिकारी का पहला मध्यम अधिकारी थी और उसे उत्तम अधिकारी, उसमें भी उत्तम अधिकारी में हंस परमहंस कुटीचक बहुचक बहुत प्रकार के हैं, बहुत बहुत सूक्ष्म विचार है। सुखदेव गोस्वामी जी भागवत हैं किंतु नारद जी उनसे परम भागवत हैं। इसका सब विचार है, सब सभी बराबर नहीं है। तुलसी के पत्ते सब बराबर होने पर भी वैष्णव सब एक बराबर नहीं है, और सबको लिपापोती कर करके सब पापड़ बेल दिया एक साथ में, सभी एक हैं, अपराध होगा। एक बेस्या को एक माँ को दोनों को आया, दोनों तो महिलाएं, दोनों के एक सिंहासन पर, दोनों का जो आदर करते हैं कि पार्थक्य नहीं समझते हैं, तो उनका ये माता के प्रति अपराध हो जाता है। इसी तरह से वैष्णवों को के प्रति कोई अपराध ना हो, उसके लिए बतलाते हैं किसी वैष्णव पर तनिक भी कोई प्रहार मत करो। विशेष करके जिनको संबंध ज्ञान हो गया है, हरिनाम करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान पर आश्रित हैं, उनका कभी भी प्रहार मत करो, उनकी कभी भूल करके निंदा मत करो, किसी प्रकार से निंदा मत करो। वैष्णव यदि दोष भी है तो दोष मत देखो, क्यों? भगवान ने कहा पिछे सुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरे वसा मंतव्य सम्यक व्यवस्थे ही सब। कुछ दिनों के ही बाद में ठीक हो गया, क्योंकि वो बीच का जो दांत था वो तोड़ दिया गया है, अब वो पाप नहीं करना चाहता, हो गया उसके लिए अनुताप करके उसी से वो शुद्ध हो जाएगा। उसके लिए तुम निंदा मत करो, तुम उसके गुणाइयों को देखो, गुणों को देखो, और नहीं तो उसे बच करके चलो, निंदा मत करने जाओ। जो बुरे आदमी हैं उनकी भी निंदा मत करो, क्योंकि बुरा निंदा करने से क्या होता, उनकी बुराइयां हमारे अंदर में चली आएगी। इसलिए खबरदार कभी किसी व्यक्ति की नहीं, वैष्णव की तो बात दूर है, इसलिए मत करो। और खबरदार द्वेष मत करो, उनका अहित करने की चेष्टा से उनके प्रति जो व्यवहार होता है उसको कहते हैं द्वेष, द्वेष मत करो। और उसका अनादर मत करो, अनादर माने के आदर तो नहीं करते हैं, अनादर भी करते हैं, आदर नहीं करते हैं ये अनादर, ऐसा नहीं। आदर करना पड़ा देख करके उठ करके खड़े हो, जब आ रहे हो पधारिए आइए, जब जा रहे हैं उनके दो कदम उनके पीछे चल करके चलना, पानी पिए पानी लेकर के रख दिया, आदर करो। अनादर वही करेंगे तभी जाएगा, इसलिए अनादर मत करो। निंदा और मारपीट और ये सब चीजें तो ये अलग रहे, अनादर भी मत करो। कुछ आदमी तटस्थ रहते हैं, निंदा भी नहीं करेंगे आदर भी नहीं करेंगे, हम तटस्थ, तटस्थ रहना भी तुम्हारे लिए खतरनाक है। बच्चों के प्रति ठाकुर जी और भगवान के प्रति तटस्थ नहीं रहना है, ये निर्विशेषवादी अद्वैतवादी होते हैं, जिसको हमारे आचार्यों ने खंडन करके निरस्त किया। तटस्थ कभी नहीं रहना चाहिए भक्ति से। और क्रोध मत करो वैष्णवों पर, खबरदार मत करो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्रोध किसी पर मत करो, किंतु वैष्णव यदि हो गया तो भी क्षमा है, उसका तो निराकरण हो जाए। किंतु वैष्णवों पर जो हरिनाम करने वाले हैं, शुद्ध रूप में भगवान पर आश्रित हैं, जो कुछ बन चुके हैं, ऐसे वैष्णवों पर खबरदार क्रोध मत करो। और वैष्णवों के मिलने पर यदि आनंद नहीं होता, हर्ष नहीं होता, प्रसन्नता नहीं होता, ये भी अपराध है। और की तो बात क्या, समझ रहे हैं ना? वैष्णवों को देखते ही चित्त प्रसन्न हो जाए, ये बात ठीक है। और यदि देख करके आ रहे हैं बस तो ऐसा होगा, है ना? ये जो है छह प्रकार के वैष्णव अपराध, इससे भी बचो। अनजान में भी होगा तो गड़बड़ करेगा, आग भी देंगे तो उसमें जले जलाएगा, बहुत भीषण चीज है। इसलिए प्रार्थना कीजिए वैष्णव के प्रति अपराध, क्यों? भगवान की महत्ता, नाम की महिमा, भगवान की सेवा की बातें, उनकी कथाएं ये वैष्णव लोग ही तो सुनाते हैं। और उनके प्रति ऐसा होगा यदि भूल से भी हुआ, भूल से तो नहीं, आजकल भूल से नहीं होता, जान बुझ कर कर, ये हमारी पार्टी है, ये हमारी पार्टी है, भक्तों की कोई पार्टी नहीं। नारद जी कौन से पार्टी में है? सुखदेव गोस्वामी कौन पार्टी में है? हम लोग की पार्टी है यही सब, हमारी पार्टी भक्त जहां पर हरिनाम करते हैं यहाँ हरिनाम होता है, जो हरिनाम करता है सतगुरु का आश्रय करता है, वो सभी लोग हमारी पार्टी के हैं। हमारा वंश बढ़े है? वो उस दल के हैं और हमारे गुरु जी तो इस दल के हैं, कभी उनको यहाँ पर मत आने देना, उनका नाम हम नहीं सुनना चाहते हैं। अरे वो बहुत जरा उन्नत हैं, उन्नत से क्या है, हमको तो पार्टी बाजी अपना दल बढ़ाना है, भक्ति का नहीं, ये गड़बड़ है। इन सबको देख करके विचार करके चलना, आज जरा समय हो गया, डॉक्टरों ने हमको निषेध किया है, हमको बार बार निषेध कर रहे हैं, इसलिए आज यहीं पर समाप्त करता हूँ, कल इसके बाद में कुछ। आप लोग उत्साह के साथ में इन चीज़ों को धारण करेंगे तब भक्ति में अग्रसर हो सकेंगे, और नहीं तो एक रिक्रिएशन मनोविनोद के समान हम चल रहे हैं, खूब गंभीरता से लेकर के चलेंगे, भजन में उन्नति होगी। शिक्षा गुरु का यही कर्तव्य है, सबको उचित शिक्षा दें, उनका किसी के ऊपर में पार्टी फीलिंग इत्यादि नहीं। इस प्रकार से चल करके हम लोग भजन, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। उस गुरु का शिष्य है, मैं उस गुरु का शिष्य है, ये आज तक कभी नहीं हुआ था, अब होने लगा। पहले लोग था जो अपने शिष्य को आदर नहीं देते थे, दूसरे के शिष्य को अधिक आदर देते थे, जैसे अपना बेटा आया दूसरे का एक बेटा आया, अपने बेटे को रोक करके दूसरे के बेटे को छाती से लगा दे, ये है प्रेम ना, ऐसा होना चाहिए। ऐसा उदारता नहीं आएगी तो वैष्णव धर्म नहीं रह सकता, ये वैष्णव धर्म में ये कैंसर और टीबी घुस रही है, भगवान इसे रक्षा हमारी कर सके। आज यही कह करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ, यदि कोई कड़ी बात हमारे मुख से निकल गई है तो आप लोग इसके लिए क्षमा करें।